वेद सुबह उठकर जिम एरिया की तरफ जा रहा था कि तभी उसे लीला की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ। वेद ने उनकी तरफ से शगुन जरूर स्वीकार किया था, लेकिन फिलहाल सगाई या शादी की किसी भी रस्म के लिए साफ मना कर दिया था। उसके मना करने के बावजूद राजावत फैमिली अरमान और नव्यांशी की सगाई की तैयारी कर रही थी। उन्होंने मुहूर्त तक निकाल दिया था और बिना वेद से बातचीत किए 3 दिन बाद सगाई भी रख ली थी। कहीं ना कहीं वेद को पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि नव्यांशी और अरमान के रिश्ते के बारे में जानने के बाद लीला किसी तरह की देर नहीं करेगी। वैसे भी उसे चौहान पैलेस तक पहुंचने का बहाना चाहिए था। साथ ही वो ये भी जानता था कि लीला ने सिर्फ सगाई की ही तैयारी नहीं की होगी, बल्कि उसने शिवांशा के खिलाफ भी कोई चाल जरूर चली होगी। वेद जिम एरिया में जाने के बजाय स्टडी रूम में आ गया था और उसने तुरंत प्रतीक को कॉल किया। प्रतीक के लिए ये नया नहीं था कि वेद ने उसे इतनी सुबह कॉल किया था। उसने कॉल रिसीव करके तुरंत पूछा, सब ठीक है न भाई? काश मैं हाँ कह पाता, वेद ने गहरी सांस लेकर कहा। एक काम करो, मुझे अगले 2 दिनों में नव्यांशी की सगाई के लिए अरेंजमेंट चाहिए, जो तुम्हें पता है कि किस लेवल के होने चाहिए। किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। नव्यांशी की सगाई, वो भी इतनी जल्दी? किसके साथ? प्रतीक ने हैरानी से पूछा। अरमान राजावत के साथ। इससे पहले कि राजावत फैमिली इस मामले में अपनी टांग अगाए, मुझे खुद ही सब संभालना होगा। अरेंजमेंट जहाँ भी हो, हर एक कोने में CCTV इंस्टॉल होना चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड्स को अवेयर कर देना। अगर शिवांशा उनकी नज़रों से 1 मिनट के लिए भी दूर हो तो वो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करेंगे। दूर से वो शिवांशा पर नज़र रखेंगे और किसी भी तरह से उसकी प्राइवेसी इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए। वेद ने प्रतीक को हर एक बात समझा दी थी। जी भाई, समझ गया, प्रतीक ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। वेद को इस वक्त लीला पर गुस्सा आ रहा था, जो किसी से बिना पूछे इस तरह डिसीजन लिए जा रही थी। अगर बात नव्यांशी की खुशी की नहीं होती तो वेद अच्छे से जानता था कि उसे लीला को कैसे सबक सिखाना है, पर फिलहाल लीला को सबक सिखाने से ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए शिवांशा की सिक्योरिटी और नव्यांशी की सगाई थी। प्रतीक से बात करने के बाद वेद सोफे पर सिर पकड़कर बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में उसके सिर में दर्द होने लगा था। इस बीच शिवांशा की नींद टूटी तो वो वेद को ढूंढते हुए सबसे पहले जिम एरिया में गई। वेद वहां नहीं था तो उसके बाद वो स्टडी रूम में पहुंची। वेद को इस तरह से सिर पकने देखा तो शिवांशा जल्दी से उसके सामने गई। क्या आपके सिर में दर्द हो रहा है? आपने मेडिसिन टाइम से नहीं ली होगी, मुझे बताइए कौन सी दवाई लेकर आनी है? शिवांशा परेशान स्वर में जल्दी जल्दी बोल रही थी। वेद ने अपने सिर से हाथ उठाया और नज़र उठाकर शिवांशा की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने शिवांशा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया था। उसकी अचानक की गई इस हरकत पर शिवांशा की नज़रें झुक गई थी। मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा है और मैंने अपनी दवाइयां भी टाइम से ली हैं, वेद ने शांत लहजे में जवाब दिया और शिवांशा का चेहरा पकड़कर ऊपर कर दिया था। उसने शिवांशा की आंखों में देखते हुए कहा, ये जो तुम अपने दिल में बड़े बड़े सपने लेकर चलती हो, ये तभी पूरे होंगे जब शर्माने के बजाय मेरी आंखों में देख पाओगी। फिर भी कौन सा मेरा सपना पूरा हो गया? आपने मुझे जगाया भी नहीं। किस तो मैं भूल ही जाती हूँ, शिवांशा ने मुंह बनाकर कहा। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें सोते हुए कभी नहीं जगाने वाला, और नींद में किस करूंगा तो भी तुम्हें कौन सा पता चलने वाला है, वेद ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैं सो रही हूँ, आप आकर मुझे वैसे ही जगाना जैसे मैं चाहती हूँ, शिवांशा जल्दी से बोली। वेद उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। फिर भी उसने शिवांशा को मना नहीं किया और हल्के से सिर हिला दिया था, जिस पर शिवांशा खुश हो गई थी। वहीं वेद की गोद में बैठे हुए शिवांशा ने आंखें बंद की और उसके कंधे पर सिर रख लिया था। वेद मन ही मन बड़बड़ाकर बोला, ये सच में मुझसे ये करवाना चाहती है, न जाने इसे खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, इसकी उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। वेद के लिए शिवांशा की हरकतें बहुत चाइल्डिश थीं, उसे ये सब करते हुए भी काफी अजीब लग रहा था, पर शिवांशा की खुशी उसके लिए सबसे बढ़कर थी। वेद ने शिवांशा के फोरहेड पर हल्का सा किस किया और उसके कान में धीमी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग, आंखें खोलो और देखो, एक नई सुबह शुरू हो चुकी है, या तुम्हें देर तक सोना है? शिवांशा ने जल्दी से आंखें खोली। उसने मुस्कुराकर वेद की तरफ देखा और बोली, बस मैं अपनी हर सुबह की शुरुआत इसी तरह चाहती हूँ, आँख खोलते ही आपका चेहरा सामने होना चाहिए। ठीक है, फिर सुबह 5 बजे उठने के लिए तैयार हो? वेद ने भौहें चढ़ाकर पूछा, जिस पर शिवांशा ने जल्दी से नामे सिर हिला दिया था। चलो तो फिर जल्दी से खड़ी होकर तैयार हो जाओ, मैं बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आता हूँ, वेद बोला और शिवांशा को अपनी गोद से उठने का इशारा किया। शिवांशा फिरंत खड़ी हो गई थी। वो कमरे से जाने के लिए पलटी, लेकिन फिर उसने वापस वेद की तरफ देखा। अचानक शिवांशा ने गंभीर आवाज में कहा, आपने अब तक बताया नहीं कि आप परेशान क्यों हो? वेद ने तुरंत शिवांशा की तरफ देखा। उसे लगा कि थोड़ी देर बात करने और शिवांशा की जिद पूरी करने के बाद वो भूल जाएगी कि जब वो कमरे में आई थी तब वेद सिर पकड़कर बैठा था। कुछ नहीं हुआ, वेद ने उसे टालते हुए जवाब दिया। क्या आप हमेशा मुझसे ऐसे ही सारी बातें छुपाने वाले हैं? अब तो ऑफिशियली हम पति पत्नी बनने वाले हैं, आप मुझसे सब बातें पूछते हो और मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो। ठीक है, अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, लेकिन कम से कम आप अपनी परेशानियां तो मुझे शेयर कर ही सकते हैं। क्या मैं इसकी उम्मीद कर सकती हूं कि हम एक दूसरे से अपने दिल की बात खुलकर बताएंगे? शिवांशा ने उम्मीद भरी निगाहों से वेद की तरफ देखा। उसकी ये समझदारी भरी बातें सुनकर वेद को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले उससे अपनी अजीब से जिद पूरी करवा रही थी। ऐसा नहीं था कि शिवांशा के बर्ताव में बचपना था या वो जिद्दी थी, लेकिन वेद के सामने उसका जिद करने का भी मन करता था और बच्चों जैसी हरकतें करने का भी। सिर्फ वही था जो बिना जज किए उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरी करता था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, वेद बोला, और मैं भी आपको अकेले परेशान नहीं देखना चाहती हूँ। प्लीज बता दीजिए ना क्या हुआ है, क्या फिर से मिसेस राजावत ने कुछ किया, शिवांशा ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। जिस तरह लीला जबरदस्ती शकुन लेकर उनके घर में घुस आई थी, उससे शिवांशा को पहले ही अंदाजा हो गया था कि वो वेद को परेशान करने के लिए दोबारा कोई ना कोई हरकत जरूर करेगी। वेद ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया और जवाब में कहा, उन्होंने मुझसे बात किए बिना ही नव्यांशी और अरमान की सगाई की तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। उनके हिसाब से सगाई 3 दिन बाद है और हमें कुछ नहीं करना, बस नव्यांशी को उनके यहाँ लेकर पहुँचना है। क्या? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? नव्यांशी की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी और आप सब लोगों की भी। अभी तो वंश भैया इस रिश्ते तक के लिए तैयार नहीं है, फिर वो इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों कर रही है? शिवांशा हैरत भरे लहजे में बोली, तुम अच्छे से जानती हो वो बस तुम्हें और मुझे परेशान करना चाहती है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सिक्योरिटी का मैंने देख लिया है। रही बात इस सगाई की, तो इस मामले में बात करने मुझे राजावत फैमिली से मिलना ही पड़ेगा, वेद ने सख्त आवाज में कहा। अब शिवांशा को उसकी परेशानी का कारण समझ आ रहा था। अचानक उसकी आंखों में अफसोस के भाव उभर आए थे। वो वेद के पास जाकर नजर झुकाकर बोली, आई एम रियली सॉरी, आप परेशान थे और मैं आपसे उल्टी सीधी हरकतें करवा रही थी।
करते वक्त तो मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था, पर इतना भी बुरा नहीं था। इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस हो गई कि मुझे फ्यूचर में अपनी लिटिल सी वाइफ को कैसे जगाना है, वेद ने हल्के लहजे में कहा। उसने शिवांशा को वहां से भेज दिया था और फिर जेमेरिया में चला गया था। जब शिवांशा को ये सब सुनकर इतना अजीब लग रहा था, तो जाहिर सी बात थी कि वंश और नव्यांशी ये सुनने के बाद ओवर रिएक्ट करने वाले थे। कुछ ही देर बाद वो सब लोग एक साथ डाइनिंग एरिया में थे। शिवांशा ने देखा वेद अभी भी थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। खाना खाते वक्त वेद कोई भी सीरियस कॉन्वर्सेशन को नहीं शुरू करना चाहता था, पर वो इसे टाल भी नहीं सकता था। ब्रेकफास्ट होते ही वेद ने वंश की तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहा, मुझे सुबह मिसेज राजावत का मैसेज आया था और उन्होंने नव्यांशी और अरमान की सगाई का 3 दिन बाद का मुहूर्त निकाला है। और वो कौन होती हैं ये सब खुद से करने वाली? क्या उन्होंने आपसे डिस्कस किया? हमारे लिए हमारे पेरेंट्स और घर के बड़े आप ही हो, फिर वो अकेले डिसीजन कैसे ले सकती हैं बिना हमें इन्वॉल्व किए? वंश ने सख्त आवाज में कहा। उसका जवाब सुनकर वेद को थोड़ी हैरानी हुई। अब वो उनके रिश्ते के खिलाफ नहीं बोल रहा था, बल्कि वंश को इस बात से दिक्कत थी कि लीला ने बिना वेद से डिस्कस किए खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लिया था। वेद ने आराध्या की तरफ देखा, जिसने इस बात का इशारा देते हुए हल्के से सिर हिला दिया था कि उसने वंश को समझा दिया था। आराध्या के समझाने पर वंश को उनके रिश्ते से तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर हाँ, उसे इस तरह लीला का सब कुछ करना पसंद नहीं आया। सिर्फ वंश ही नहीं, आराध्या भी इस बात से नाराज थी। इस बार मैं वंश की बात से अग्री करती हूँ भाई, आराध्या बोली। अभी नव्यांशी यहाँ वापस नहीं आई है, ठीक से हम लोगों ने कुछ डिस्कस नहीं किया, वो खुद से सब कुछ कैसे डिसाइड कर सकती है? मैंने नव्यांशी से बात की थी और उसे सगाई से दिक्कत नहीं है, वेद ने जवाब दिया। उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे है। और वो क्यों एंगेजमेंट के अरेंजमेंट कर रहे हैं? नव्यांशी इस घर की इकलौती बेटी है, तो उसकी शादी और बाकी फंक्शन धूमधाम से करेंगे। ये क्या मतलब हुआ कि वो हमें गेस्ट के तौर पर इन्वाइट करना चाहती है? मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, वंश ने ठंडे लहजे में कहा। शिवांशा इन सब के बीच बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। वैसे भी वो उनमें सबसे छोटी थी और अभी उनकी फैमिली में ठीक से इन्वॉल्व भी नहीं हुई थी कि उनकी फैमिली के फैसलों के बीच में बोल सके। उनका इस तरह सब कुछ डिसाइड करना मुझे भी पसंद नहीं आया। मैंने प्रतीक को बोला है कि वो एंगेजमेंट की तैयारी हमारे हिसाब से करे और एंगेजमेंट हमारे अरेंजमेंट किए गए वेन्यू पर ही होगी, वेद ने उन्हें बता दिया था। फिर भी इतनी जल्दबाजी में सगाई सही नहीं है। एक तो पहले से ही मुझे इस रिश्ते से अच्छी वाइब नहीं आ रही है, वंश ने गहरी सांस लेकर कहा। उसका दिल अभी भी नव्यांशी और अरमान के रिश्ते के लिए नहीं मान रहा था। जो भी हो, तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा और हम शाम को राजावत फैमिली से मिलने चलेंगे। उम्मीद है कि तुम उनके साथ तमीज से पेश आओगे, वेद ने उसे पहले ही समझा दिया था। देखा जाए तो नव्यांशी और अरमान के रिश्ते की बात करने के लिए उनके पेरेंट्स के ना होने की स्थिति में वेद और शिवांशा को जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से लीला शिवांशा को मैनिपुलेट करती थी, वेद ने वंश को अपने साथ ले जाने का सोचा। हालांकि वंश जाना नहीं चाहता था, फिर उसने एक नज़र शिवांशा की तरफ देखा। वो चिढ़ते हुए बोला, मुझे उस औरत का चेहरा तक नहीं देखना है, लेकिन सिर्फ भाभी की वजह से जा रहा हूँ और सगाई से पहले एक बार मुझे अरमान राजावत से मिलना है। मुझे श्योर होना है कि वो नव्यांशी के लिए सही है या नहीं। और तुम्हें सही नहीं लगेगा तो कौन सा नव्यांशी तुम्हारी सुनने वाली है, वेद तंज भरे लहजे में बोला और उठकर ऑफिस जाने के लिए निकलने लगा। उसने बिना उनकी तरफ देखे तेज आवाज में कहा, बाहर आना शिवांशा। शिवांशा उठकर जाने को हुई, तभी वंश जल्दी से बोला, आप समझाती क्यों नहीं है अपने पति को? आपने तो उस फैमिली को करीब से देखा है, वो सब कुछ जानते बूझते हुए अपनी बहन को उस घर में कैसे भेज सकते हैं? लेकिन अरमान भाई सच में बहुत अच्छे हैं और वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं वंश भैया, आप उनसे मिलोगे तो आपको समझ आ जाएगा, शिवांशा ने उसे समझाया और फिर वेद के पीछे बाहर जाने लगी। वहीं उनकी 3 दिन बाद होने वाली सगाई के बारे में सिर्फ चौहान फैमिली में ही हलचल नहीं मची हुई थी, इस बारे में देवेश के जरिए अरमान को भी पता चल गया था और वो काफी गुस्से में था। डॉट डॉट डॉट
लीला कांड करें और खबर दूर दूर तक ना हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? समीक्षा करने वालों, सिर्फ ओके नाइस ऑसम लिखने के बजाय थोड़ा बड़ा कमेंट भी लिख दिया करो। देखते हैं आज सबसे बड़ी समीक्षा किसकी होती है। सब समीक्षा करके जाना।